दिल्ली का नरेश परीक्षित लाल सफेद घोड़ा पर सवार होकर के शिकार को जाता है। हालांकि गया तो शिकार के लिए था, शिकार तो नहीं मिली, परीक्षित को दूसरी शिकार मिल गई। एक गाय डकराती हुई राजा परीक्षित के सामने आती है, उस गाय के पीछे एक बैल और उस बैल के पीछे काला कलूट चांडाल हाथ में मूसल लिए हुए आता है, जानते हो? तो परीक्षित लाल नहीं समझ सके और तब तक गाय परीक्षित के सामने आके बोली, कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? कौन है जो मेरी लाज बचाने आए? हाँ हाँ बचाने आए, हाय बचाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। अब लाख कौन दुनिया में त्यागी है, राम परण कौन दुनिया में त्यागी है, त्यागी है, त्यागी है, मौत के मोह से गौ बंध छुड़ाने आए, मौत के मोह से गौ बंध छुड़ाने आए, धर्म के नाम पे बलिदान चढ़ाने आए। ए! इस गूढ़ रहस्य को परीक्षित लाल समझते हैं, आगे जाकर के ललकारते, ओ गाय और बैल पे हाथ उठाने वाले, तू समझ चुका है कि पारत का जमाना बीत गया, लेकिन पारत नहीं जिंदा, लेकिन पार्थ के वंश का पौधा मौजूद है। तूने गाय पर जो उंगली उठाई है, इस उंगली को तोड़ दूंगा, तूने जो गाय पर आंख उठाई है, इस आंख को फोड़ दूंगा। कौन है तू? आगे बढ़कर के महाराज परीक्षित ने गाय और बैल को पुचकारा, दोनों के होश ठिकाने आने लगे और दोनों कहने लगे, महाराज आपकी छाया में गाय और ब्राह्मण निर्भय रहते हैं, लेकिन महाराज आगे वो समय आ रहा है, कुछ दिन के बाद जमाने की अब हवा बदलने वाली है, धर्मावतार ये धर्मों की सबसे आखिरी दिवाली है, और महाराज ये गाय नहीं है, ये पृथ्वी है, अपनी भविष्य की विथा को देख करके भाग रही है, और महाराज मैं बैल नहीं हूं, मैं धर्म हूं, अपनी निर्बलता के कारण मैं दुनिया को छोड़ के जा रहा हूं। महाराज शत्रुघ्न में हमारे 20 चरण थे, मैं तीनों लोकों में व्यापक था, त्रेता में 16 चरणों से ज्यों तो गुजर चलाता था क्योंकि थोड़ा सा धर्म दिखाई दे रहा था, द्वापर में 12 चरणों से मैं अपना समय गुजार रहा था, लेकिन महाराज हाथ में जो मूसल लिए खड़ा है काला कलूटा चांडाल है कलयुग, इसने आते आते भाला तान दिए, पृथ्वी को नीचे दबा दिया, हमारे पैरों को तोड़ डाला, और महाराज जब ये कलयुग आएगा बड़े बड़े बुरे काम होंगे। तो महाराज पूछने लगे, कौन कौन से बुरे काम होंगे? तो कहा, सुनिए, आगे वो समय आ रहा है बेटियां कोई जानेगा, बेटियां कोई जानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म कोई मानेगा, भैया धर्म कर्म होंगे महाराज। तो राजा परीक्षित जिस समय कलयुग को मारने के लिए उद्दत होता है, कलयुग उसी समय कहने लगा, महाराज हमारे अंदर अवगुण ही अवगुण नहीं, हमारे अंदर गुण भी हैं। पहला हमारे अंदर गुण है कि पहले युगों में लाखों बरस तक महात्मा लोग भजन करते थे, उन्हें भगवान का दर्शन नहीं होता, तो कलयुग में एक बार मुंह से राम कहो एक पल में आराम मिलता है। दूसरा गुण हमारे पास है कि द्वापर त्रेता सतयुग में मनसा पाप लगता था, लेकिन महाराज हमारे युग में हमारे शासन में बिना करी का पाप नहीं लगेगा, अब आपकी मर्जी है, मार दो। परीक्षित लाल कहने लगे, अब हम तुझे मारेंगे तो नहीं, लेकिन भैया साधु ब्राह्मणों गाय पर थोड़ी कृपा करो। कहने लगे, महाराज तो जगह बताओ। तो महाराज परीक्षित कहने लगे, जिस जगह जुआ खेलता हो तुम बाहर हो, जहां झूठी गप्पे लड़ाई जाती हुई तुम बाहर हो, जहां मांस मदरा खाया जाता हो तुम बाहर हो, और जहां बेस्याएं शराब पी जाती हो वहां रहो, जिस घर में साधुओं का सम्मान न हो तुम वहां रहो, जिस घर में भगवान का ध्यान न हो तुम वहां रहो, और जाओ तुम कंचन में और बास करो। महाराज के माथे पर मुकुट था सोने का, कलयुग ने छलांग लगाई, मुकुट में समा गए। इधर महाराज आगे बढ़ते हैं, लोमस ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। महात्मा जी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। परिचल्ला सोचने लगे, इसने हमें देख करके आंखें बंद कर ली। उसी वक्त दोस्तों मरा हुआ सांप उसके गले में डाल देते हैं। यह खबर जिस समय लगी है लोमस के बेटा श्रृंगी को, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि अरे नालायक, तूने मेरे बूढ़े बाप के साथ में भाग खेली है, तो जा तुझे आठ में रोज तच्छक डस लेगा और तेरी मौत हो जाएगी। समझिए परीक्षित लाल को खबर लगी है कि मुझे आठ में रोज तच्छक डस लेगा। उसी समय श्री हरहर गंगा के किनारे आकर के श्री सुखदेव जी के द्वारा भागवत का श्रवण करते हैं। और इधर इतमे से सनरे सने खान पान दो छारी सुकन दिया सोबे जभी हो नवल दे रान। दोस्तों वासक ने कहा कि मैं सुख में तभी सोऊंगा जो हमारी बिटिया नवल दे रान हो जाएगी। और उसी समय उन्होंने एक सभा बनाई है, सभा मीटिंग की है, और उस मीटिंग में यह कहा है कि कोई ऐसा है जो जाकर के परीक्षित को डसे। सभी नाग नीचे को निगाह कर गए। एक नाग था बिल्कुल सुर्ख काला, वो नाग आगे बढ़ा, कहने लगा घबराओ नहीं मैं जाता हूं। इधर नवल दे बहुत होशियार लड़की है, महाराज दिन भर तो कथा सुनते थे, शाम को महात्मा लोग उन्हें महलों में छोड़ जाते थे। नवल दे चारों तरफ नांदन में दूध भर देती थी। यह चला है वहां से, जा रहा है बादशाह का भेजा हुआ वो काला नाग। धाओ करके जोर हुई रहो सोरो घुसो नंगर में, हम जाए भूप को डसे रे के अभी तो ये कई। नांग जा रहा है, लेकिन हुआ क्या, और पहुंच गयो जब महल करी ना दहल, घुसो अंदर में घुसो अंदर में। क्या किया, अरे कर जो रसो रजब धायो, अरे कर छोर जब जहरी धाओ, हर नहदन में गोता खाओ। दोस्तों ध्यान रखना, खानदानी नाग था, जब दूध उसने पिया तो फिर तो दावा सब भूल गया, क्योंकि जिसका खा लिया जाता है उसके ऊपर हमला तो नहीं किया जाता। जब ये लौट करके आया, महाराज बासक ने पूछा कि कहो काम कराए हो, कहने लगा महाराज माफ कीजिए, काम तो मैं करके नहीं आया। क्यों महाराज, हमें वहां पीने को दूध मिला, ਸੋਚ ਸਮਝ ਚੱਲਦਾ ਓ ਸੇਸ ਢਿਗ ਗਹੋ ਸੀ ਸਗਨ ਨਾਓ ਜਤ ਜੋ ਕਛ ਬੀਤੋ ਹਾਲ ਰੇ ਬਾਸੀ ਕਕੋ ਸਭ ਸਮਝਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਦੋ ਮੈਂ ਗੋਤਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੌਟ ਆਇਆ ਹੂੰ ਜਿਸਕਾ ਮੈਨੇ ਸੁੰਦਰ ਦੂਧ ਪੀਆ ਉਸੇ ਕੈਸੇ ਖਾਏ कमीन की औलाद ए बास करी सजब भाओ श्राप दे दाओ तेरा ना लाओ तेरा ना लाओ तुए मोह को हुई जाइए दो गला जाओ तुए मोह को हुई जाइए दो गला जाओ दोगला है तू तो दो मुहिया सांप तो देखा होगा पुनः उसने बीरा रखवा दिया कोई चबा ले इसको दोस्तों ताखा बैठा हुआ था तक्षक ने कहा कि चिंता ना करो मैं चबाऊंगा बीड़ा तक्षक ने वो बीड़ा चबा लिया अब कथा जहां हो रही है श्री सुखदेव जी भागवत सुना रहे हैं तक्षक वहां के किसी न किसी रूम में चक्कर देने लगा सुने कथा दे चित्त रात को नित महल में आवे जय तरह तरह ते नांग सुता समुझावे नागिनी कहती है प्रिया नाग सुता ने कही सुनो पति सही तुम्हें समझावे मेरो बीरन आओ महल अकली बदलावे प्रिया मेरा वीरन महल में आ रहा है तक्षक अरे आनंद पलिंग बैकी रे अरे मेरे मान कहीं पति लीजे और धरती पे पैर मत लीजे धरती पर पैर न दें इसी में भलाई है जो हो नहार बलबान रे होएगी भैया सोई अरे हो नहार बलबान होएगी सोई जे सके न कोई ध्यान रखना दोस्तों इधर तो नवल दे अपने पिया के साथ सो गई है परीक्षित लाल के लेकिन कहां सोई है मालूम है ए सोचे नवल दे अपने मन में पिया को कहां ले दुबकाए और घात लगाए भैया डोले क्या से नाई देश बसाए ए राम सुमिर के पद बिरताने चल में महल करो तैयार अपन के नागानों को तक ढिग महलन में पहुंचो जाए इधर नाग जो है बड़ा सुंदर फूल बन गया ओ मंजन करन परीक्षित धाओ कर में लीनो फूल उठाए उठाए धरो पॉकेट में सोई और रंग महल में जाए। ओ पोरी संग लली बस ककी आधी रात झमारी आए और फूल से नांग तो बनियो तचलो छाती पे बैठियो जाए। छाती पर बैठ गया और सूरत देखी जब दो उनकी दिल में सोच सोच रह जाए और भय से नींद बस जब वे दोनों आधी रात हमारी आए और मन में सोच तू है अब तक चोरी ना बिगाड़ी जाए और हुकुम पिता को कैसे तारे दियरा लहर लहर लहराए और नदियां सूख गई मेरे पंचम अंबर सुर दगौल कहलाए और आज मुठ के तब तक राजे लौट ना कमे खाए। ध्यान रखना दोस्तों, तक्षक ने महाराज परीक्षित की नाक में डस लिया। खाई भूप को छुप गओ तक्षक बेईमान, प्रात होत बिटिया जगी बको गओ पति पे ध्यान। जो सुबह हुआ नवलदे की नींद टूटी है, जो पिया को देखा है तो दोस्तों चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। क्या सोचने लगी, मम प्राण पत जागे नहीं आज खून निदिया सो रहे, क्यों गाफिला छाई पिया पे जहर में क्या भोई गए। क्या बात है, ये तो चार बजे चारपाई छोड़ देते थे, आज इतना समय हो गया हमारे प्राणेश्वर की नींद नहीं खुली, कारण क्या है। लेकिन समझ गई वो चतुर, मानो बाबुल ने को पिखे वीरन दियो पठाई के, रोबे सुता बसे सकी दुख कौन बरने गाई के। छाती फटत ये रोज सुने सब तनु गओ मुरझाई के, किस भात से वर्णन करू दुख से रही घबराई के। क्या हुआ, हमारे वीरन ने मेरे पिया को डस लिया है। दोस्तों एकदम से मुंह पे मुंह रख करके आ नवल दे फपक फपक के रोने ले। मेरो वीरन बेरी भयो पिया पापी ने डस खायो, रोबे छाती फार नवल दे नार नैन जल डारे, धरती सो मारे हाथ रे कहर से पंचो भारे। क्या हुआ, अरे कहर से भारे कहर से भारे नागिनी भारे कहर से भारे, तुम्हारा
से पट्टो पारे
महाराज धन्वंतर के लिए नबल दे ने खत भेजा है कि जल्दी आकर के मेरे पति के बदन से जहर को खींच लो। धन्वंतर ने जिस समय यह खबर सुनी है फौरन ही सोचने लगे कि हमें चल के परीक्षित को पुनः जीवन दान देना है। धन्वंतर जी चल देते हैं परीक्षित को जिंदा करने।
अरे अब धन्वंतर बाचत खत के फौरन ही चल दिए। तक्षकन अंगारी ही आई के तमाशे कैसे किए।
देखिए इधर धन्वंतर जी बड़े बेग के साथ चले हैं और इधर तक्षक आगे आकर के क्या देखता हो क्या करता है।
महाराज संग में 1400 चेला और मन में सोच विचार खेल जन अद्भुत ही खेला। भैया हाथ का मंडल और माथे में टीका लगो है क्या के हाथ का मंडल है पाइन में खड़ा हूँ
आ गया तक्षक सामने। गुरुजी बड़े बेग के साथ जा रहे थे। तक्षक ने कहा महाराज को प्रणाम। धन्वंतर जी ने आयुष्मान भव कहने के बाद में आगे को बढ़ने की कोशिश की। तक्षक कहने लगा महाराज बड़ी तेजी से जा रहे हो कहां जा रहे हो। धन्वंतर कहने लगे हैं परीक्षित को तक्षक ने दसाए बड़ी कसर हुई है और मैं जा रहा हूं परीक्षित को जिंदा करने। तक्षक कहने लगे महाराज एक बात आप नहीं जानते हो। क्या? जिस नाग ने परीक्षित को डसा है वो इतना जहरीला नाग है कि अपनी फुसकार से डर के जो सामने वृक्ष खड़ा इसको जला के राख कर देगा। आप दही के धोके चूना न चाहती है श्रीमान जी।
धनमंतर जी कहने लगे, तूने उसके जहर की प्रशंसा की, अरे लेकिन तू जानता है कि मेरी जहां तक नजर पहुंचती है तहां तक कितना भी जहरीला सांप हो उसका जहर नहीं ठहर सकता। तच्छ कहने लगा, धनमंतर जी कोरी प्रशंसा सुनकर के मुझे हंसी आ रही,
मैं वही नाग हूं जिसने परीक्षित को डसा है।
तू ही है वो?
हां,
मैं तेरे जहर को निचोड़ दूंगा, हमारे जहर को। खैर, हमारे जहर को बाद में निचोड़ना, हमारी आपकी बाजी लग जाए।
क्या बाजी लगाएगा तू? बाजी बाद में देखूंगा, पहले परीक्षित को देखूंगा।
तच्छा कहने लगा,
हम ताल ठोकते जाते हैं और तुम गाल बजाते जाते हो, करकसा औरत की नाई चेतक निकलाते जाते हो। दिखलाते जाते हो।
अगर हिम्मत है तो गाल न बजाओ,
मैं फुसकार मारता हूं, अगर बच्चों को तुम हरा कर दोगे हम समझ लेंगे।
जरा जरा नजर घुमा दीजिए, जरा नजर घुमा दीजिए, फुसकार मेरी आ रही है। हाँ, जरा नजर घुमा दीजिए, फुसकार मेरी आ रही है। हाँ, जरा नजर घुमा दीजिए। इतना कहकर के तच्छक ने फुसकार मारी,
वृक्ष जल के राख हो गया।
पेड़ी नहीं चौतर फाका, वो खग मंडल बेहाल हुआ, पर धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ।
अब तो तचक समझ गया, जे वहां जाएंगे तो महात्मा के श्राप के साथ साथ हमारी भी ताकत को कम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना,
आगे बढ़ाए तच्छक। हालांकि नहीं पता धनवंतर जी को कि मेरे साथ एक विलक्षण धोखा होने वाला है, और क्या किया है उसने। अरे हुई अंतर ध्यान रहा मैं लोटा, तच्छक सोचा। महाराज देख धन मंत्र लियो उठाई, सोटा से बन के नांग गुरु जी लय पीठ में खाए। दगा न समझ पाई कैसी हुई गई, अरे हुई गई दगा न समझ पाई कैसी हुई गई। हाँ भैया हुई गई है दगा न समझ पाई कैसी हुई गई।
जो गुरु जी को पीठ में खाया, क्योंकि गुरु की जहां तक नजर पड़ती वहां तक जहर नहीं रहता था, लेकिन पीठ पर नजर कैसे जाए।
धनवंतर जी समझ गए,
धनमंतर ने कही दगा हुई गई, सुनो मेरे चेला, महादेव मांद में गाड़ी न करो झमेला। हमें जल्दी से मांद में गाड़ दीजिए, ऊपर ढांक बजाई। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने चेलों से बोले धनमंतर जी, ऊपर ढांक बजाई रहे समझाए, हाय लगाइयो हेला, मेरो तीन मास में करियो दर्शन मेला, मेरो तीन मास में करियो। अब हमें जल्दी से मात में गाड़ दीजिए। दोस्तों ध्यान रखना को उसी वक्त चेलों ने माद में गाड़ दिया गुरुजी को, और ऊपर ढांक बजाने लगे, और कैसे गाने लगे, ठंडी ठंडी प्यार चले पोरवाई झोंके जैसे बैगन हाथी हो, अरे लहर लहर बिसु हो, नींद अब कैसी भैया। ठंडी ठंडी प्यार चले पुरवाई झोंके जैसे बैंगन हाथी हो, अरे लहर लहर मिसे हो, नींद भेरो भर आई तुम खेलो, तुम खेलो, तुम खेलो ना दिया मनाऊं बड़ी बात सेवा ना चूकूं, सेवा चूकूं बुरे मनाऊं चूकूं दसऊ बात, जाऊ गुर के भान से सौ बड़े धाम रे, अंधते धुंध भये धुंधते लीला साय, लीला साय तो दुर्गा साय, दुर्गा साय से सूर्य देवता तो शुरू हो रहा था दोस्तों, लेकिन तब तक तक्षक आ गया, कहने लगा ये ढाक कैसी बज रही है। जवाब दिया गुरुजी अंदर है। तक्षक कहने लगा अरे मूर्खो, गुरु की लाश को सड़ा रहे, अरे अब जिंदा कहां है, वो लाश गल जाएगी। दोस्तों जो इतने वचन सुने हैं, चेला घबरा गए, उसकी चंडाल चौकड़ी में आ गए और गुरुजी की लाश को उखाड़ लिया। जो गुरुजी की लाश को उखाड़ा कहने लगे मूर्खो तुमने ये क्या किया है, अरे हमें उखाड़ के तुमने अच्छा नहीं किया, अब तो मेरा काल आ चुका, हम बचेंगे नहीं, इसलिए तुम ऐसा करो कि मेरे मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा करके रांद करके खा लो। तो अरे तुम 1400 धन मंत्र, अरे 1400 होयो धन मंत्र, और मैंने कन राखो अंतर, और आखिरी है यही मेरो मंत्र, और तुम सवई तो हो जाइयो सुतंत्र। जल्दी करो, एकदम से सभी शिष्य लग गए। गुरुजी के मांस को काट काट के हड्डियों में चढ़ा दिया, और जब ये मांस हड्डियों में चढ़ा दिया तछका के कहने लगा, क्या हो रहा है? जवाब दिया, गुरुजी के मांस को खा रहे।
तछक बोलो क्यों बिरथा में कै जालू वाले फैलाओ,
तुम उन्हीं को रान के खा रहे हो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ।
महाराज का चेला तुरंत गए घबराए, ओ जितनी हरिया थी सब भैया समुदम दैत घुमाए।
और इधर नबलदेव पिया की लाश पर रो रही है कि गुरुजी जाने किसने बिलमा लिए, अभी नहीं आए, अब मैं क्या करूं। मेरे नौजवान साथियों, सोचने लगी है, चलो मैं अपने पिया की लाश को लेकर के अपने बाबुल की कचहरी में चलूंगी।
जा लगी उठा बन लाश रे पिया बन, भैया घनैया एक सुंदर बाबे बाने लाश रखी, भैया सुंदर घनैया में लाश सब सैया की, सैया की लेनी बाबुल के घर को चली, भैया लाश बाने घनैया में वो।
इस तरह से दोस्तों ध्यान रखना, लाश उठा करके घनैया में रखी है, और नबलदे जो है सोच रही है कि मेरा बाप जो है मेरे पिया का जहर अवश्य खींच लेगा, और चली है।
छाती फाती जाय रही अकुलाय बड़ी घबरानी, इत गंग धार में बहरो रे आथान पंचो पानी, दहशत मानी न दहशत मानी, जग उड़ रहे हो सहबास बड़ी घबरानी, जग उड़ रहे हो सहबास बहुत घबरानी।
आज जिस समय ये अपने पिता के दरबार में पहुंची है, धरती पर शीश पटक दिया और रोने लगी। महाराज अपने बाप से कहने लगी कि तुमने मुझे रढ़ापा क्यों दिया है? मेरे दोस्तों
सुन, बेटी के बैन सुरख भय नैन रोस अति बाड़ो, जब बासिक नर हुई और साबा में फौरन तारो।
ये समय बोली है, ओ पिताजी मेरे पिया के जहर को खींच लो। एकदम से बासिक सभा में खड़ा हो गया और कहने लगा,
राजा की लाश उठाई दई फिक बाई, भाव संकारो भाव संकारो, बासिक की देख अनीति जड़ होतन जाड़ो, बासिक की देख अनीति जड़ होतन जाड़ो।
दोस्तों आज इस तरह से जब लाश को फेंकवा दिया, जितने नांग थे सब बात बुरी लगी है, लेकिन बोला तो कोई डर के मारे नहीं। लाश उसने उठवाई और पुनः घनैया में रख ली है। कैसे चली है?
समुद्र की पली पार रे संग नहीं जाके कोई, पल्ली पारिस नदन को ना मुनवल दे रोई।
अब कहाँ जाऊं मैं, अब कहाँ जाऊं अपने प्रिया को लेकर, अब कहाँ जाऊं।
महाराज घनई समुद्र में तारी, प्रिया की लाश रेने तो झुक रही पंचो अंधियारी। भैया धड़ 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 बादल गरजत पृथ्वी देहलानी। यारो धड़ धड़ बादल गरजत बादल पृथ्वी देहलानी। पृथ्वी देहलानी ददा मेरे पृथ्वी देहलानी। भैया धड़ धड़ बादल गरजे के उत्तम पृथ्वी।
ध्यान रखना दोस्तों, इस तरह से वो लाश को लिए हुए जा रही। अंधेरी रात है, अब तो बड़ी भयंकर दशा हो रही है। लेकिन दोस्तों, जब लाश पे बैठी हुई घनैया अंधेरी रात में लिए जा रही है, तो आज प्रिया के गले से लग करके कहने लगी, साजन
अरे प्रीतम ने के बोले सो नाई दे।
कैसी नींद आ गई तुम्हें, एक बार तो बोल दो कम से कम, अब तो मैं कहीं की नहीं रही।
अरे सैया ने के बोल रे सुनाई ने, और पापी ने को तो धीर से बहनाई ने। अरे जब रोई करके शब्द रे करारो, और तब लहासने के भरोए हूं कारो।
इतना भयंकर वो दृश्य था, सच कह रहा हूं मेरी तो जवान नहीं काम करती।
जिस दम घबराई नार मां भवानी, तब दही लाश हुंकार दिलासा लानी। महाराज नार बंगाले पहुंची जाए, लगी पार पे लाश पार पे उतरी रानी आए। भैया रात अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत में, पंचो रात अंधेरी आज हाथ पे हाथ में दिखत है।
ऐसा हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। एक गंगनिया नाम की धोबिन जो थी, वो वहां कपड़े धोने आई। परीक्षित की सुंदरता को जब उसने देखा है, तो दोस्तों ऐसी उसने चाल चली है कि इधर तो नबल दे। एक बात और बताऊं दोस्तों, दुख में पहले तो नींद आती नहीं, और अगर आ जाए तो बहुत विलक्षण आती। पिया के पैरों पर सर रखे हुए नबल दे सो रही थी, बस धोबिन ने उस लाश को चुरा लिया। जब इस दुखिया की नींद खुली है, बिलखने लगी, उसी बंगाले का राजा आता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। जवाब दिया, मेरा पति यहां से चुरा लिया गया। अब तो उसे बड़ा भारी गम हुआ, उसने सारी जादूगरियों को बुलाया, सबके ऊपर कोड़ों की बौछार हुई। लेकिन वो गंगनिया नाम की धोबिन नहीं आई, तो एक धोबिन कहने लगी, महाराज वो नहीं आई। फौरन उसे बुलाया और बुला करके कहा कि ओरी नालायक जल्दी बोल, लाश कहाँ है। एकदम से जब मार पड़ी है तो उसने महाराज परीक्षित की लाश को दिया है। लेकिन दोस्तों हुक्म दिया इसको जिंदा करो, लेकिन जिंदा कौन करे, किसी की हिम्मत काम नहीं देती है। बड़े बड़े मंत्र चलाए हैं लेकिन
तब नहीं किसी की पेश पड़ी, नहीं लहर जहर की घाट भई, तब होनहार को कहा करें राजा की देही फट गई। तब होनहार को कहा करें महाराज की देही फट गई। तब होनहार को कहा करें राजा की देही फट गई।
इस तरह से बदन उसका फट गया। इधर जनमेजय नाम का जो पुत्र हुआ है वो दिल्ली का नरेश बना। एक दिन उसकी सभा में एक नौजवान आकर के कहने लगा कि महाराज मैं मर करके पुनः जिंदा हुआ हूं। जनमेजय क्या सभी सभा के लोग कहने लगे तुम बिल्कुल झूठ बोलते हो। जवाब दिया नहीं महाराज, इस तरह से तुम्हारे पिता को डसने के लिए तच्छक आया, इस तरह से धन्वंतर और तच्छक में बहस हुई, मैं उस समय उस वृक्ष पे लकड़ी काट रहा था, तच्छक ने भुस्कार मारी, पूरा वृक्ष जल गया, धन्वंतर की नजरों से वृक्ष हरा हो गया और तच्छक ने तुम्हारे पिता परीक्षित को डस लिया। जनमेजय की आंखों में लोहू के कतरे आ गए, हमारे पिता को तच्छक ने डसा है। उसी समय जनमेजय ने एक ऋषियों को बुला करके विलक्षण यज्ञ किया है। और दोस्तों जिस समय आहुतियां दी हैं तो मालूम है आपको,
मंत्रण के आधार बाने असहार कुदरती छूटे, जब धर धर धरती कपी वज्र से टूटे। छाए तीनों लोगों रही न रोका, जगत सिर फूटे, जगत सिर फूटे, जब पकड़ पकड़ बन नांग है मूज से फूटे। अरे बासक नांग लोकत चालो, और खानन को परियो है लालो, है जबर से पालो, अरे अज को यहां कठिन रे कसालो। अरे नांगन की बंध गई फैटी, और बचने की करत है कमेटी, अरे जब लगती है कुमर की सेती, और ये देश है टून सोए थी।
ध्यान रखना दोस्तों,
अष्टकुली को भेद सबन को छेद रे बांस के आए, और अग्नि कुंड को घेर के चौद सा खाए।
इस तरह से जिस समय उसने आहुतियां दी हैं तो दोस्तों ध्यान रखना, अष्टकुली के नाग आकर के वहां उपस्थित हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि तच्छक ने बासिक से कहा कि पिताजी अब हमारी जान तो नहीं बचती है, और फौरन ही तच्छक भाग करके महाराज इंद्र के पास गया और इंद्र के सिंहासन में उसने लपेटा लगा लिया। क्या हुआ, निगाह करिए जनमेजय ने, लेकिन तच्छक मामा तो नजर नहीं आ रहे। जनमेजय सोचने लगा,
जब इतनी सुनकर कुमर रे मंगाए रही फौरन सामान।
महात्मा से पूछा कि मामा कहाँ है, महात्मा लोग कहने लगे देवराज इंद्र के सिंहासन में लपेटा लगाए। अब तो उसकी आंखों में खून उतर आया।
जब इतनी सुनकर कुमार मंगाई लई सामा, इंदुर को लिए हम देख दुकाई लो मामा। महाराज फेर जन आउत दई अघाई, फूक दऊ सब नांग इंद्र से खोली मंगाई।
उसी समय जब आहुतियां दी हैं तो महाराज इंद्र का सिंहासन खींचने लगा। इंद्र सोचने लगे ये तो गजब हो रहा, फौरन ही इंद्र ब्राह्मण बन के सामने आ गया। महाराज की जय हो, क्या कारण है, आप कैसे आए? जवाब दिया है, महाराज आप यज्ञ करते हैं, मैं याचक बन के आया हूं, हमें दक्षिणा मिले, दान लेने आया हूं। जनमेजय कहने लगे मांग लो। इंद्र कहने लगा तक्षक के प्राणों का दान मांगता हूं। जनमेजय घबरा गए और कहने लगे अरे देवराज इंद्र, तुम ब्राह्मण बन के आए हो, तुमने मेरे मामा के प्राणों की भीख मांगी, मैं दे तो रहा हूं लेकिन पहले तक्षक को मेरे सामने कीजिए। दोस्तों जो तक्षक को सामने किया, महाराज जनमेजय आगे बढ़े और जन्मेदय ने तक्षक को इस तरह से सूंता कि उसे निर्विष कर दिया। ध्यान रखना,
निर्विष करके दो छोड़ रे के तक्षक भैया मामा। इस तरह से अब जन्मेदय को के पूर्ण है गौ कामा। सुन ले वरज हमारे और दोनों कुल आगे को बन गए पर नाए लो तो ऐसा।
इस तरह से जन्मेजय ने अपने बाप का बदला लिया।